आज ऑफिस में रेहान जो तमाशा करके गया था उसकी खबर पूरे दफ्तर में फैल चुकी थी। यहाँ तक कि पूरी बात फैजान तक भी पहुँच गई थी। उसने रेहान को ऑफिस से निकलते हुए खुद देखा था और तभी से उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो रेहान को अच्छी तरह जानता था, इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं था वो। फैजान ने कुर्सी पर पीछे से टिकाते हुए अपने माथे पर हाथ मारा। मैं तुम्हारा क्या करूं नूर, उसने खुद से बुदबुदाया। उसे पूरा यकीन था जैसे ही नूर घर पहुंचेगी रेहान जरूर वहां आने की कोशिश करेगा, और वो ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसने किसी काम का बहाना बनाकर नूर को अपने ऑफिस में बुला लिया। कुछ देर दोनों काम की बातें करते रहे, फिर मौका देखकर फैजान ने कैजुअली कहा, आज हमारे कमिश्नर साहब की एनिवर्सरी है, हमें वहां जाना है। नहीं, नूर ने बिना एक सेकंड लगाए जवाब दिया। फैजान ने उसकी तरफ देखा। मैं रात 7 बजे के बाद कहीं नहीं जाती, नूर ने बिल्कुल साफ लहजे में कहा। तो आप कमिश्नर साहब की पार्टी में नहीं जाएंगी, फैजान ने हल्का सा भौं उठाकर पूछा। क्या वो मेरी जॉब का हिस्सा है, कोई ऑर्डर है, नूर ने सीधा सवाल किया। ऑर्डर तो नहीं, फैजान कुर्सी से टिकते हुए बोला, लेकिन वो हमारी सीनियर ऑफिसर हैं, पूरे ऑफिस को बुलाया गया है, जितने भी DC, असिस्टेंट कमिश्नर और बाकी ऑफिसर्स हैं सब जा रहे हैं। नूर चुप रही। फैजान ने जानबूझकर बात को थोड़ा और घुमाया। अगर आप नहीं जाएंगी तो अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे आपको इतना एटीट्यूड है कि आप अपने ही कमिश्नर की एनिवर्सरी में नहीं पहुंची। नूर ने हल्की सी आंखें सिकोड़कर उसे देखा। उसे साफ लग रहा था कि फैजान उसे किसी तरह मनाने की कोशिश कर रहा है, और सच भी यही था, क्योंकि असलियत ये थी कि पार्टी में सिर्फ फैजान को बुलाया गया था, नूर का नाम गेस्ट लिस्ट में था ही नहीं। मगर फैजान उसे अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था, कम से कम आज नहीं, जब रेहान की आंखों में वो जुनून साफ दिखाई दे चुका था। आप आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल जाइए, फैजान ने नूर से कहा था। घर जाकर रेडी हो जाइए, मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगा। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं भी जल्दी निकल रहा हूँ रेडी होने के लिए। असल में फैजान जानता था कि अगर नूर रोज की तरह देर से घर पहुंची तो बहुत मुमकिन था कि रेहान उसके घर के बाहर उसका इंतजार करता मिले, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था, इसीलिए उसने जानबूझकर ये प्लान बनाया था। ठीक वक्त पर फैजान नूर के सरकारी रिहायशी बंगले के बाहर पहुंच गया था। उसकी गाड़ी गेट के सामने आकर रुकी। वो नूर को फोन करने ही वाला था कि तभी बंगले का दरवाज़ा खुला। फैजान की नज़र सामने जाती लड़की पर टिक गई। नूर ब्लू कलर की जॉर्जेट साड़ी में बाहर आ रही थी। साड़ी के पल्लू पर हल्का सा सिल्वर वर्क था। स्लीवलेस ब्लाउज उसकी पर्सनैलिटी को और ग्रेसफुल बना रहा था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। कुछ पल के लिए फैजान बस उसे देखता रह गया। आज वो खुद गाड़ी चला रहा था। नूर आकर उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। फैजान ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी, मगर नूर ने उसकी मुस्कुराहट पर ध्यान ही नहीं दिया। दोनों कमिश्नर साहब की एनिवर्सरी पार्टी में पहुंच गए थे। गिफ्ट लेकर वे अंदर गए और सबसे पहले कमिश्नर साहब से मिले। अरे मिस नूर, कमिश्नर साहब ने उसे देखते ही कहा, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ आएंगी। बस इतनी बात सुनते ही नूर समझ गई थी कि उसे असल में इन्वाइट नहीं किया गया था, फैजान उसे अपने साथ लेकर आया था। नूर ने तुरंत एक नज़र फैजान की तरफ डाली, और फैजान, वो पहले से जानता था कि अब उस पर गुस्सा गिरने वाला है। तभी कमिश्नर साहब हंसते हुए बोले, वैसे आपने आते ही तहलका मचा दिया, गेस्ट हाउस सील करने की खबर हर तरफ फैल चुकी है। वैसे आपने गिरफ्तार किसे किया था, मालिक को या उसके बेटे को? गेस्ट हाउस मेरा है सर, फैजान ने अचानक कहा। कमिश्नर साहब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। क्या? फैजान हल्का सा मुस्कराया। असल में वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, मेरी एक कजिन उसे चलाती थी, बाद में समझाऊंगा आपको। ओ, कमिश्नर साहब ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने नूर की तरफ देखकर कहा, वैसे आप काफी ब्रेव है, आपने तो अपने ही बॉस की प्रॉपर्टी सील कर दी, मैं सच में इम्प्रेस हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फैजान ने बात संभालते हुए कहा, ऑफिस में इस पर बात कर लेंगे। कमिश्नर साहब फिर दूसरे मेहमानों से मिलने चले गए, और उनके जाते ही नूर ने बेहद गुस्से भरी नजरों से फैजान को देखा। फैजान ने हल्की सांस ली, उसे पता था अब उसे नूर को मनाना पड़ेगा। वो उसे खाने वाली साइड पर ले आया और उसके हाथ में प्लेट थमाते हुए बोला, पहले मेरी बात सुन लो, फिर जितना गुस्सा होना है हो जाना। नूर चुपचाप उसे देखती रही। रेहान तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, फैजान ने धीरे से कहा, मैं नहीं चाहता था कि आज तुम उससे मिलो, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। नूर की आंखों का गुस्सा थोड़ा बदला, मगर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। देखो, फैजान ने नरमी से कहा, हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, नूर ने तुरंत जवाब दिया। जैसे आपका वो गेस्ट हाउस, फैजान चुप हो गया। आपने कमिश्नर साहब से कहा कि आपकी कजिन उसे चलाती थी, नूर ने उसे घूरते हुए कहा, जबकि उसे आपकी कजिन नहीं आपकी बीवी चलाती है। फैजान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। आपने अपनी शादी का जिक्र तक नहीं किया। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर फैजान ने धीमे मगर साफ लहजे में कहा, मेरा तलाक हो चुका है। नूर एकदम चुप हो गई। क्या? हाँ, फैजान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा और माहिरा का कई साल पहले तलाक हो चुका है, अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। नूर सचमुच हैरान रह गई थी। मैं बहुत सालों से उनसे मिला तक नहीं, फैजान ने शांत स्वर में कहा, मेरा उन लोगों से अब कोई वास्ता नहीं। वहीं फैजान के साथ काम करने वाले बाकी ऑफिसर्स दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके लिए ये नज़ारा किसी शौक से कम नहीं था। डिप्टी कमिश्नर फैजान अहमद खुद असिस्टेंट कमिश्नर नूर इकबाल के लिए प्लेट लगाकर लाया था और ऊपर से उसे मनाने की कोशिश भी कर रहा था। कुछ ऑफिसर्स ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया था, क्योंकि फैजान को सब जानते थे। वो उन लोगों में से नहीं था जो किसी के पीछे जाएं या किसी को मनाए। लोग खुद उससे बात करने से पहले 10 बार सोचते थे, मगर इस वक्त वो साफ तौर पर नूर को मनाने में लगा हुआ था। बस यही देखकर कई लोगों को फैजान के दिल का हाल समझ आ गया था। लेकिन नूर, वो अब भी अपने गुस्से में इतनी उलझी हुई थी कि उसे आसपास की निगाहों का एहसास ही नहीं हुआ। मुझे आपके डाइवोर्स के बारे में नहीं पता था, नूर ने धीरे से कहा, मुझे बेहद अफसोस है। फैजान कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर अचानक हल्का सा हंस पड़ा। आपको पता है, उसने प्लेट में सलाद रखते हुए कहा, पूरा शहर हाई अलर्ट पर है, बारिश होने वाली है, उसके इंतजाम देखने चाहिए आपको। आप इतनी बड़ी ऑफिसर हैं, शहर की फिक्र कीजिए। नूर ने हल्का सा भौहें से कोड़कर उसे देखा, मुझे लगा आपको बुरा लगता होगा इस बारे में, वो धीमे स्वर में बोली। फैजान के चेहरे की मुस्कान इस बार थोड़ी फीकी हुई। वो शादी, उसने कुछ पल रुककर कहा, मेरे लिए सिर्फ एक ड्रामा थी। नूर चुपचाप सुनती रही। ना वो शादी मेरी मर्जी से हुई थी और ना माहिरा को कभी मुझमें कोई दिलचस्पी थी, उसने बेहद सामान्य लहजे में कहा, जैसे कोई पुरानी और खत्म हो चुकी बात बता रहा हो। फिर धीरे धीरे सब खत्म हो गया, उसने कंधे उचकाए, गोली मारो इस बात को। फिर उसने प्लेट नूर की तरफ बढ़ाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, खाना खाइए, वरना लोग यही सोचेंगे कि मैं आपको यहाँ भूखा लेकर आया हूँ। दूसरी तरफ रेहान अब भी नूर की रिहाइश के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसे खबर मिल चुकी थी कि नूर ऑफिस से निकल चुकी है, मगर वो अभी तक घर नहीं पहुंची थी और यही बात उसे बेचैन कर रही थी। आज ऑफिस में जो कुछ हुआ था वो रेहान भूल नहीं पा रहा था। जिस तरह नूर ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी, वो बात उसके अहंकार को अंदर तक चुभ गई थी। वो गाड़ी में बैठे बैठे बार बार खड़ी देख रहा था। धीरे धीरे आधी रात होने लगी, मगर नूर अब तक नहीं आई थी।
उधर नूर फैजान के साथ पार्टी में थी, दोनों ने साथ में खाना खाया था। उसके बाद कॉफी पीते हुए फैजान ने उसे अपने कुछ करीबी दोस्तों से भी मिलवाया था, और पता नहीं क्यों, जब से नूर को फैजान के तलाक के बारे में पता चला था, उसके अंदर एक अजीब सा हल्कापन उतर आया था। फैजान ने उससे कुछ कहा नहीं था, ना ही नूर खुद अपने एहसास समझ पा रही थी, मगर दिल के किसी कोने में जैसे एक सुकून जाग गया था। शायद इसलिए क्योंकि दोनों के दिलों में जो मोहब्बत धीरे धीरे जन्म ले रही थी, किस्मत भी अब उन्हें उसी तरफ धकेल रही थी। आखिरकार रेहान इंतजार करते करते थक गया। उसे लगा कि शायद नूर आज रात घर ही नहीं आने वाली। गुस्से और बेचैनी के साथ वो वापस अपने घर लौट आया। जैसे ही रेहान घर पहुंचा, उसने देखा कि माहिरा अब भी जाग रही थी। वो शायद उसी का इंतजार कर रही थी। माहिरा ने एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ पूछे समझ गई कि वो कहाँ से आ रहा है। उसके चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट उभरी, मगर उसने कुछ कहा नहीं।